તારીખ 12/12/1998 શ્રી મદરાજચંદ્ર પત્રાંક 76 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 792
પત્રાંક 76 22મા વર્ષમાં ની ઉંમરે આ લખાયેલો પત્ર છે. દૂસરા કુછ મત ખોજ, માત્ર એક સત્પુરુષ કો ખોજ કર, ઉસકે ચરણ કમલ મેં સર્વભાવ અર્પણ કરકે પ્રવૃત્તિ કરતા રહ, ફિર યદિ મોક્ષ ન મિલે તો મુજસે લેના. ગેરંટી લેના હૈ મોક્ષ પાને કે લિયે, વો ગેરંટર હુએ હૈ. વો બેંક મેં લોન વાલા દેને વાલા કો ગેરંટર દેના પડતા હૈ ના, તમે કોઈ ગેરંટર લે આવો, આપ પૈસે નહીં ચુકાઓગે તો ફિર કોણ દેંગે. બેંક વાલે ઓર એક દો કો સાથ મેં લે લેતે હૈ જો સંપન્ન હો, વો ભી કિસકો લેતે હૈ, સ્થાવર મિલકત હો, મને કોઈ સંપન્ન હો ઉસકો ગેરંટર કે રૂપ મેં લેતે હૈ. ગુરુદેવ ખુદ હી મોક્ષ માર્ગ કે લિયે સંપન્ન હૈ, 22 સાલ કી ઉમર મેં ગેરંટી દે રહે હૈ. ઉતના હી કરો, એક હી વચનામૃત લિખા હૈ કે ઇતના હી કરો, ફિર મોક્ષ નહીં મિલે તો હમસે લે જાઓ. કહેને કા આશય વો હોતા હૈ યહાં કે ઉનકો માલૂમ હૈ કે અગર કોઈ એસા કરતા હૈ ઉસકો સહેજ મોક્ષ મિલતા હૈ, તો હમારે પાસ લેને કો આને વાલા હૈ નહીં, હમકો કોઈ ગેરંટી દેને મેં કોઈ આપત્તિ નહીં હૈ, ક્યોંકિ વો આયેગા હી નહીં, ખુદ હી મોક્ષ કો પ્રાપ્ત કરેગા, ક્યોં આયેગા. ઇતની ઠોસ બાત કર રહે હૈ ઇધર. દૂસરા કુછ મત ખોજ, જ્યાદા દિમાગ લગાને કી જરૂરત નહીં, ક્યા કરે, કૌન સે શાસ્ત્ર પઢે, હમારે લાયક ઉપદેશ કૌન કે કૌન સે શાસ્ત્ર મેં હોગા, ઇસ શાસ્ત્ર કા કૌન સા પ્રકરણ પઢે, ક્યા કરે, કહાં સે શરૂઆત કરે, યે એક સમસ્યા હૈ કે શરૂઆત કહાં સે કરની, સહી શરૂઆત કહાં સે કરની. બાકી તો હર સંપ્રદાય મેં અપની અપની રુચિ કે અનુકૂળ સબ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ કર લેતે હૈં, અપની મનમાની કરતે હૈં. ઇસમે જિસકો ધનબલ હોતા હૈ દાન મેં લગ જાતે હૈં, લેકિન લગતે હૈં કોઈ લગતે હૈં ઇસકી બાત હૈ. જિસકો તનબલ હોતા હૈ વો ક્રિયા મેં લગ જાતે હૈં, ઉપવાસ વગેરે વ્રતાદિ ક્રિયા મેં લગ જાતે હૈં. જિસકો મન બલ મેને ક્ષોભસમ કા બલ હૈ, દિમાગ બુદ્ધિ બહુ જ્યાદા ચલતી હૈ, શાસ્ત્ર મેં ઘુસ જાતે હૈં, બહુ શાસ્ત્ર પઢ લેતે હૈં, એસે તન મન ધન કા ઉપયોગ કોઈ તીનો કા ભી કરતા હૈ, કોઈ એક કા કરતા હૈ, કોઈ દો કા કરતા હૈ, કોઈ તીનો કા કરતા હૈ. માનતે હૈ કે હમ કુછ કરતે હૈ હમારા કલ્યાણ હો જાયગા, લેકિન કિસી ભી કામ છોટા હો મોટા હો પદ્ધતિ સે હોતા હૈ, હર કામ કી કોઈ ને કોઈ પદ્ધતિ હોતી હૈ. યે તો બહોત બડા કામ હૈ મોક્ષ કી પ્રાપ્તિ હોના, या मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होना, मोक्ष का उपाय ही, मोक्ष मार्ग माने मोक्ष का उपाय की भी प्राप्ति होना, वो अनंत काल में तो नहीं हुई है। अभी आत्मा अनंत काल से भटक रही है संसार में, प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए तो हम इधर है। अभी हमारी इधर की जो वर्तमान मौजूदगी है वो इस बात का सबूत है कि आगे हम मोक्ष नहीं प्राप्त किया, मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं किया। तो काम तो सबसे बड़ा है जो अनंत काल में नहीं किया हुआ, नहीं हुआ है, ऐसा ही है। और इसकी कोई पद्धति हम समझे नहीं और वैसे ही मनमानी करते रहे, या संप्रदाय में, जिस कुल में, जिस संप्रदाय में हम जन्म पाए, जन्म लिया, उसमें जो भी चलता है उसमें हम जुड़ जाए, ये कोई विचारवान बुद्धिमान लोगों का काम तो नहीं है। ये तो अंधश्रद्धा में सब चलते हैं, सारी दुनिया धर्म के क्षेत्र में बहुत अंधश्रद्धा से चलते हैं। और अच्छे अच्छे दिमाग वाले, बुद्धि वाले भी अपनी बुद्धि इधर नहीं लगाते, पैसा कमाने में बहुत लगाएंगे, दूसरे दूसरे संसार के जो समस्याएं इसमें तो बहुत लगाएंगे। इतनी जो शोध खोल हुई है, खोज साइंस की हुई है, दिमाग तो बहुत लगाए हैं लोगों ने, लेकिन एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, बहुत एक बड़ी करुणाजनक स्थिति है कि इधर ही कोई दिमाग लगाते नहीं कि हम कर रहे हैं क्या सही है, ये पद्धति सही है या नहीं है, उसकी कोई परीक्षा नहीं करते, ऐसे ही जुड़ जाते हैं। जिसने जहाँ जन्म लिया, मुसलमान में जन्म हुआ नमाज पढ़ने को चले जाएगा, क्रिश्चियन में जन्म हुआ वो संडे को संडे प्रार्थना करने को चर्च में चला जाएगा, कोई रोज जाएगा तो कोई जुम्मे के जुम्मे जाएगा तो कोई इतवार को जाएगा। इस ठीक कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बराबर हो कि है कि नहीं है, इसकी पूरी तलाश होनी जरूरी है। और इसलिए हमने हमारे जब जब जो जो संप्रदाय में जन्म हुआ हमने सब कुछ किया, फलस्वरूप हमारा परिभ्रमण वैसा का वैसा रहा है। जैन हुआ तो जैनियों की तरह करने लगे, उसमें कौन सी नई बात हुई, तो उन्होंने यहाँ एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है मोक्ष पाने के लिए कि जो मोक्ष का उपाय जानते हैं, इस विषय में जो अनुभवी है, अनुभव ज्ञान जिसमें, जिसने सफलता को प्राप्त किया है, उनसे वो अनुभव ज्ञान की प्राप्ति कर लेना चाहिए। अपने आप कल्पना करके कोई दिमाग लगा ले या रीत रिवाज रूढ़िगत रूप से अंधश्रद्धा से चले, बजाय ऐसा करने के पहले कम से कम हमको इस बात की सूझ आनी चाहिए कि अगर आत्मज्ञान ही मोक्ष पाने का उपाय है, आत्मज्ञान में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों एक में सम्मिलित है, और ये जैन दर्शन में ये सूत्र प्रसिद्ध है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, सूत्र जी का पहला सूत्र है, दिगंबर संप्रदाय में तो प्रसिद्ध है, श्वेतांबर को मान्य है ये ग्रंथ, फिर भी वहां वो प्रचलित नहीं है, प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए वो लोग पुण्य क्रिया से धर्म मना रहे हैं, जैसे अन्य संप्रदाय वाले मनाते हैं ऐसे। यहाँ भी जो इस विषय पर विचार नहीं करते वो भी पुण्य क्रिया से ही धर्म मान लेते हैं, करते हैं, कराते हैं, अनुमोदन करते हैं। लेकिन अगर हमारा ध्यान गया कि आत्मज्ञान से ही मोक्ष होता है, तो जिसको आत्मज्ञान है उससे हमें आत्मज्ञान लेने का प्रयास करना चाहिए। ये बहुत सामान्य बुद्धि का विषय है। कैसे सामान्य बुद्धि का विषय है कि ये जो पशु को चराने वाले होते हैं, गाय भैंस को, बकरे को, हाँ भेड़ियों को, घेटा को भेड़िया बोलते हैं, वो कोई पढ़े लिखे आदमी नहीं होते, फिर भी जब इसको दर्द होता है, रोग होता है, तो डॉक्टर के पास जाता है, वैद्य के पास जाता है। वो कोई सीधा मेडिकल स्टोर में नहीं जाएगा, और बाकायदा तो ऐसे दवा देंगे भी नहीं कि भाई आपको कुछ भी हो हम कैसे जाने, तो ऐसे तो दवा नहीं देंगे, आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ले आओ, वो कानून अच्छा है न। कोई वो मेडिकल बुक्स को पढ़ने की ट्राई करेगा कि चलो अपन कोई पढ़े लिखे नहीं है, थोड़ा पढ़ करके इसकी किताब पढ़े हैं, चलो नहीं हम पढ़े लिखे हैं, कैंसर हो गया, कैंसर हुआ कि नहीं है मालूम नहीं है, लेकिन गले में गांठ हो गई, प्रसिद्ध है कि गले में गांठ निकलता है तो कैंसर की संभावना है। कैंसर की बुक्स बहुत मिलती है मेडिकल बुक स्टोर में, मेडिकल बुक स्टोर होता है बड़े बड़े सिटी में, क्या हमको पढ़ना चाहिए, क्या अपने आप को कैंसर मिटाने का प्रयास करना चाहिए, क्या इसमें बुद्धिमानी है, क्या हम बहुत पढ़े लिखे हैं इसलिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये गैया चराने वाले जितनी भी बुद्धि नहीं है उतनी भी अक्ल नहीं है, ये बात हो जाएगी। और एक सिर दर्द होता है, 50 दवाइयाँ मिलती, कौन सी खाना कौन सी नहीं खाना, 50 गोलियाँ मिलती हैं, क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाना हुई सही सुझाव है इसका। तो ये तो भवरोग है अनादि का, ये भी एक आत्मा का रोग है, विभाव है, विकार है, दोष है, दुख है, और जन्म मरण होता रहता है, नहीं चाहते हुए भी मरना पड़ता है, ये भवरोग है और क्रॉनिक है, अनादि का है, 150 साल का रोग नहीं है, 10-20 साल का रोग हो तो भी निकालना मुश्किल है शरीर में, कि 20 साल का, 25 साल का, 50 साल का हो, ये तो अनादि का है। तो इसके लिए इसके जानकार के पास नहीं जा करके हम अपनी मनमानी कर लेते हैं, या रूढ़ी रिवाज को या अंधश्रद्धा को अनुसरण कर लेते हैं, ऑर्थोडॉक्सी को, तो ये गाय भैंस चराने वाले जितनी भी बुद्धिमान है अक्ल की बात नहीं रही, ये बात हो गई। पर इस विषय में अच्छे अच्छे विद्वान लोग भूल जाते हैं, भूलते भूले हुए हैं। जो लोग अच्छी तरह से शास्त्र पढ़ते हैं, दिमाग लगाते हैं, यानी जिसके पास अच्छी विचार शक्ति है, थिंकिंग पावर, वो इस विषय में भूले हुए हैं। वो भी ग्रंथ पढ़ पढ़ करके हम आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेंगे या जन्म मरण के मिटा देंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट हो जाता है, ऐसा एक निश्चय बनता है, बहुत बड़ी भूल है। इसलिए उन्होंने अपनी एक शैली से बात किया है, एक पद्धति से बात किया है कि हम गारंटी देते हैं तुमको, ये अगर मोक्ष पाना है ना, मोक्ष के लिए गारंटी देता है, इस इलाज के लिए क्या करना है, कुछ मत खोज, एक सत्पुरुष को खोज, आत्मज्ञान जिसको है उसको खोज, उसको खोजने में तुमको जो भी दिमाग लगाना है लगाओ, उसको खोजने में जो तुमको योग्यता होनी चाहिए उतनी योग्यता में आ जाओ। बात है मुख्य तौर से योग्यता की, कोई बुद्धिमानी की अक्ल होशियारी की बात नहीं है, ये तो शास्त्र पढ़ने में चले जाते हैं, क्षोभम वाले तो शास्त्र पढ़ने में चले जाते हैं, सत्पुरुष की खोज करने में बात रही कि ये सत्पुरुष है कि नहीं, इसकी पहचान करने की बात होती है, और पहचान करना आसान नहीं है। जैसे एक सोना चांदी होता है, हीरा होता है, उसकी पहचान करने के लिए हमको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी वो पहचाना जाता है। वैसे यहाँ भी पहचान करने के लिए योग्यता चाहिए, उस योग्यता में आए बिना पहचान सत्पुरुष की हो नहीं सकती। और योग्यता का विषय सुबह के स्वाध्याय में चल गया आज, खास पात्रता चला के नहीं चला, दो दिन से चला, आज सुबह का और कल सुबह का दोनों स्वाध्याय में वही बात चली थी। परिणति हो जानी चाहिए, हमको जन्म मरण से छुटकारा करना ही है, इस विषय में परिणति हो जानी चाहिए। 436 पत्र है ये, एक अकेला 436 पत्र में वो बात लिया है, जिसको कहते हैं दृढ़ मुमुक्षुता, जो सुबह के स्वाध्याय में बेंसरी के वचन में चले, ये 436 में उसको दृढ़ मुमुक्षुता कही, यानी पूर्ण शुद्धि का, हमको पूर्ण निर्दोष होना है, राग रहित वस्तु चाहिए हमको। क्या लिखा है वहां, राग रहित पूर्ण वितराग दशा, पूर्ण सुख की दशा, ऐसा एक लक्ष्य बिंदु होना चाहिए। हमको हजारपति होना है, लखपति होना है या करोड़पति होना है, वो पहले निश्चित करना चाहिए, तभी हमारा बिजनेस उसी पैमाने में हम अरेंज करेंगे, और हमारा प्रयास भी उसी तरह से चलेगा, उसी प्रकार से चलेगा। हमको मोक्ष पाना है तो हमारा प्रयास उसी पैमाने में चलेगा। तो इसके लिए मोक्ष का उपाय का जो जानकार है उनको खोजना पड़ेगा, उनको पहचानना पड़ेगा, पहचान होने के बाद ही सही स्वीकृति आती है। इसके पहले जो स्वीकार होता है वो अंधश्रद्धा से होता है, इसका कोई फल नहीं है। तुम्हारे लिए आएगी, दृढ़ मुमुक्षुता होवे, फिर हमारी तैयारी होवे कि वो जैसा कहे वैसा हमको अमलीकरण करना है, हमारी मनमानी नहीं करनी। प्राप्त उपदेश को अवधारण करने की तैयारी, वहां इतना शब्द पड़ा है। इतना दो प्रकार की योग्यता होने पर आगे की बात है, अंतरात्म वृत्ति, अंतर्मुख होने की इच्छा, तीव्र वृत्ति, तीव्र इच्छा, अंतर्मुख कैसे हुआ जाए, इसकी परम जिज्ञासा। ये तीन प्रकार के परिणाम योग्यता में आते हैं, तीन प्रकार के भाव वाले जीव होते हैं, इनको सत्पुरुष की या बीतराग की पहचान होती है। दोनों बात लिया है क्यों, कि कभी जन्म जन्मांतर में समोसरण में जाना हुआ, या कभी कोई ज्ञानी पुरुष के पास जाना हुआ, पहचान होगी, होगी तो काम होगा। बिना पहचान तो हम समोसरण में बहुत बार जाके आए हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। पंच परावर्तन होता है अनंत काल में, अनंत बार पंच परावर्तन हुआ, कितनी बार, अनंत बार हुआ। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन और भाव परावर्तन, सब भाव पाए। समोसरण के क्षेत्र भी छोड़ा नहीं, उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी छोड़ा नहीं, वही भाव में अनंत बार आए। बिना योग्यता निमित्त नैमित्तिक संबंध होने वाला नहीं है, कर्ता कर्म से तो है ही नहीं। कोई देवगुरु शास्त्र हमारा काम करा दे या कर दे, ये तो बनने वाली चीज नहीं है, हमारी योग्यता चाहिए। तो मात्र एक सत्पुरुष को खोज, खोजने में इतनी जवाबदारी है, इतनी तैयारी चाहिए। बात तो बहुत अल्प शब्द में रखी हुई है, लेकिन ये बात हमारी तैयारी के बिना होने वाली नहीं है। सबसे पहले तो विद्यमान सत्पुरुष की आवश्यकता है, वो बात भी दिमाग में बैठती नहीं है, या आती नहीं है, या सूझती नहीं है, या सम्मत होती नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा ही बनता है। जब ये बात समझ में आई मानो, तो पहचान होने की हमारी जिम्मेवारी खड़ी हो जाती है। इस योग्यता में आना वो हमारी जिम्मेवारी है। उसमें भी कुछ नहीं कर पाते अगर हम योग्य नहीं है तो। योग्यता बिना आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं है, किसी को भी नहीं है, किसी काल में किसी को भी नहीं है। फिर जिसको पहचान होती है या मिल जाते हैं खोज करके, वो उसके चरण कमल में सर्वभाव अर्पण करके, समर्पण करके प्रवृत्ति का रहता है, वो तो ऑटोमेटिक है। जब पहचान आ जाती है तो उसी परिस्थिति में आ जाती है। नहीं नहीं योग्यता में चलने का मतलब वो है कि हमको छूटना ही है, जो कुछ करना है वो छोड़ने के लिए, खाना है तो भी मुक्त होने के लिए, भूखा रहना है तो मुक्त होने के लिए, कमाई की प्रवृत्ति करना पड़ता है तो भी मुक्त कम होने के लिए, और निवृत्त होना है व्यवसाय से तो भी मुक्त होने के लिए, बोलना है तो मुक्त होने के लिए, मौन धारण करना है तो मुक्त होने के लिए। हम व्यापार में क्या करते हैं? खरीदी करते हैं तो कमाई के लिए, बिक्री करते हैं तो भी कमाई के लिए, हिसाब किताब की जोड़ लगाते हैं तो भी कमाई के लिए, अकाउंट की व्यवस्था की एडजस्टमेंट करते हैं, पैसों की व्यवस्था बिठानी पड़ती है, माल में, उगाही में, हाथ पर कैश चाहिए, वो चाहिए, वो सब जो व्यवस्था होती है, जितना भी एडजस्टमेंट होता है, हर जगह एक ही बात रहती है कि हमको कमाई करना है। ऐसे हमको छूटना है, ये बात का लक्ष्य जिसको नहीं छूटता है उसकी हर प्रवृत्ति में वो लक्ष्य वाली बात चालू रहती है। वो छूटता है और उसकी तैयारी वैसी होती है, इसमें 128 नंबर का पत्र है कि कुछ भी हो जाए, उपसर्ग परिसर कितना भी आ जाए, आधी व्याधि उपाधि कुछ भी हो जाए, हमको छूटना ही है। मैंने किसी कीमत पे छूटना है, एट एनी कॉस्ट हमको मुक्त होना है। एक मृत्यु के लिए हम सब कुछ करने बचने के लिए तैयार है कि नहीं है? डॉक्टर ने बोला कि आपकी परिस्थिति गंभीर है, सीरियस, बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ेगा, या हम कहें वैसे आपको रहना पड़ेगा। हम एक केस बताते हैं, हमारी मुमुक्षु के परिवार में, पूरा परिवार मुमुक्षु थे, 32 साल का जवान लड़का था, शादीशुदा हुआ था, दोनों किडनी फेल हो गई, मुंबई में इसका ऑपरेशन हुआ, मुंबई में ऑपरेशन करवाया, बेंगलोर से आकर के 3 लाख रुपया का खर्च लग गया। हम कोई हैदराबाद वगैरह से आ रहे थे, मालूम हुआ कि इधर भर्ती हुए हैं हॉस्पिटल में, तो हम उसका स्वास्थ्य देखने के लिए गए, तो उसके पेरेंट्स थे, उसने बोला इसकी माँ की किडनी उसको ट्रांसफर कर दी थी, तो माता ने किडनी दे दिया था, किडनी एक्सेप्ट हो गई थी, लेकिन पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में डॉक्टर ने बहुत जड़बे सलाख सूचनाएं दी थी कि आपको इस हॉस्पिटल में इतना दिन रहना है और इस तरह से रहना है, अगर इसमें चूक हो गई और इसको इन्फेक्शन लग गया तो मैं हैंडसअप कर लूँगा, मेरे बात हाथ की बात नहीं रहेगी, आप समझ लो कि केस फेल हो गया और सब चौपट हो जाएगा जितना भी आपने किया है। करने का है कि देखो इसके कमरे में कोई नहीं जाएगा, अगर कोई जाएगा तो इस तरह से जाएगा कि मुंह पे पट्टी लगाएंगे, इस जो स्टरिलाइज स्लीपर है वो पहनेंगे, अपने जूते नहीं चले गए, 15 फीट दूर बैठेगा, वहां से बात करेगा, 10-15 मिनट से ज्यादा कोई बैठेगा नहीं, और उसी टाइम में आएगा, दूसरा कोई टाइम नहीं चलेगा, सारे दिन आते रहे ऐसा वो भी नहीं चलेगा, इतनी इतनी बातें थी, वो परफेक्ट। हम भी वहाँ से सब उसी तरह से चले, वापस लिफ्ट में उनसे बात कर रहे थे कि देखो गुरु आज्ञा में इतने आ जाए ना कोई तो इसका तो छुटकारा हो जाए। जितकी जितनी डॉक्टर की आज्ञा में 3 लाख देने के बाद मरीज रहता है, उतना अगर अनंत जन्म एक मृत्यु के बचने के लिए वो बात है, अनंत जन्म मरण के बचने के लिए अगर उतना ही इसको हो जाए कि हमको टोटल सरेंडरशिप में रहना है तो इसका छुटकारा हो जाएगा। तो बात तो उतनी सी है इसमें। वो कहते हैं कि वेदना में आओ तो वेदना में आना चाहिए, पूर्णता के लक्ष्य में आओ तो पूर्णता के लक्ष्य में आना। मुमुक्षुता आरोहण क्रम पूरा लिया है, योग्यता क्या होती है, अवलोकन में आओ तो अवलोकन में आना है। जो भी जिस स्टेज का पुरुषार्थ है अपने को करना है। तो जो पहचानता है उसको इस बात का भान हो जाता है कि मेरा अनंत जन्म मरण खत्म होने वाला है, अभिप्राय को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सर्वभाव समर्पण करने का मतलब क्या है? सर्व विपरीत अभिप्राय को तोड़ने की पूरी तैयारी। वो कैसे आती है कि मैं कुछ समझता नहीं, सब जाना सो ठोक, जितना भी जाना है अब तक पढ़ा है, सुना है, समझा है, वो मैं कुछ नहीं समझता, मैं मेरी योग्यता को भी पूरा नहीं समझता, दूसरा क्या समझता। अब आप जैसे कहेंगे वैसे करेंगे, जैसे डॉक्टर का सरेंडर होना पड़ता है, इधर हार्ट का पेशेंट होता है ICCU में ले जाते हैं, वहां घर वाले को मिलने नहीं देते, क्यों? तो फीलिंग में आ जाता है, किसी एक व्यक्ति को देख करके इमोशनल पोजीशन में आ जाता है पेशेंट हार्ट का, तो उसका हार्ट का दौरा पड़ता है। हार्ट अटैक का सबसे कोई बड़ा फैक्टर है तो इमोशनल पोजीशन है, इमोशंस में आ गया तो हार्ट पर किसी को भी आ सकती है, तंदुरुस्त आदमी को भी आ सकती है, हार्ट फेल हो सकता है। तो इसको किसी को मिलने नहीं देते। लागणी, जैसे एक आदमी हार्ट पेशेंट है तो इसकी वाइफ को मिलने को नहीं जाने देंगे, उस कमरे में नहीं जाने देंगे, क्यों? अरे मैं मर जाऊंगा तो इसका क्या होगा, उसको फीलिंग आने लगती है। इसको बच्चे को नहीं पास में ले जाने का, अरे मैं मर जाऊंगा तो बच्चे का क्या होगा, हार्ट पर आता है ऐसा। जोर से लागणी का प्रवाह होना, फीलिंग आ जाना, उसको कहते हैं इमोशन। तो इमोशनल पोजीशन है वो, तो सबसे खराब है हार्ट के लिए, भावुकता जिसको बोलते हैं। तो मिलने नहीं देंगे, परिवार वाले को मिलने नहीं देंगे, और मंजूर करना पड़ता है जिंदा रहने के लिए, वो मंजूर करना पड़ता है। तो आप जाने को तो नहीं मिलेंगे, बात नहीं करेंगे, मुंह भी नहीं देखेंगे, तो करना पड़ता है कि नहीं? यहाँ तो आप थोड़ी बहुत छोटी मोटी बात में कहेंगे, ऐसा क्या करना, वैसा क्यों करना, ऐसा क्यों करना, लेकिन मुंह तोड़ना है छोटी मोटी बात नहीं है। एक कैंसर का दादा है, कैंसर भी मुंह के कारण से हुआ है, एक मुंह का फल है। एक कैंसर में आप सब कुछ करने को तैयार है, ये अनंत बार कैंसर होने वाला है मुंह अगर चालू रहा तो। मुंह नहीं मिटा तो अनंत कैंसर होने वाला है। देखिए बात को तुलनात्मक बुद्धि से समझना है हमको, तोलना है, इसका तुल कितना तुल देना है इस बात को हमें, ये बात सबसे पहले डिसाइड करनी पड़ेगी हमको कि कितना वजन देना है इस बात को, वो कितनी मूल्यवान है। 100 का माल 100 रुपये में लेना है या 1 रुपये में लेना है, या मुफ्त में लेना है, या 100 का 125 लगे तो भी लेना है, क्या तैयारी है आपने ये देखना है। हमको 100 का माल मुफ्त में लेना है तो ऐसा तो नहीं मिलेगा, या 1 रुपये में भी नहीं मिलेगा, 100 का 100 देना ही पड़ेगा। और हमारी तैयारी तो ऐसी होनी चाहिए कि एक दफ़े 125 लग जाए तो भी लेना है, तभी वो माल मिलने वाला है, बाकी काम होने वाला नहीं। ये देहात्म बुद्धि से तो हुआ, शरीर का रोग क्यों हुआ? 537 पत्र पढ़ लीजिए आप, कि पिता पुत्र या कोई भी परिवार के जो अपनापन किया उसको वही देह का कारण है, वो देह का विकार का कारण है। देह का विकार मैंने रोग, यही जन्म का कारण, यही मरण का कारण, यही नरक निगोद का कारण है, इतने शब्द लिखे हैं मैंने। देह नया मिलेगा, देह में रोग मिलेगा, जन्म मरण होगा, नरक निगोद में जाना होगा, सब मोह का ही फल है। तो कैंसर हुआ वही मोह के कारण से हुआ, एक कैंसर से हमको बचना है, अनंत कैंसर से नहीं बचना है, ये कहाँ की बुद्धिमानी है? उसको उसे कौन कहेगा कि वो बुद्धिमान है? सवाल ही पैदा नहीं होता। बात तो सोच समझ के करना है, अंधश्रद्धा से कुछ नहीं करना है, और अंधश्रद्धा से कुछ करना ही नहीं चाहिए। जो भी करना है सोच समझ के करना है, वो करता है इसलिए हम करें वो बात नहीं है, इसलिए हम कहें वो जो भी प्रयोग करते हैं वो सोच समझ के करिए, उसने किया है इसलिए हम करें वो बात नहीं होनी चाहिए। कभी 10 आदमी करता है तो हमको भी करना चाहिए, वो बात नहीं होनी चाहिए। हम क्या समझे, हमारा मुंह छोड़ने के लिए हम इसमें हम क्या समझते हैं, कैसे मुंह पर हमारा प्रहार होता है, हमारे परिणाम में क्या परिस्थिति पैदा होती है, छानबीन कर लो उस विषय में, पूरी छानबीन करके चलो, ऐसे मत चलो। कंपलसरी कोई बात है ही नहीं, लेकिन करना ही है आपको, या किसी व्यक्तिगत रूप से किसी को भी नहीं कहा जाता है कि आपको वो करना है, आपको वो करना है, एक व्यक्ति को नहीं बोला जाता है, अपने आप कुछ भी करो, लेकिन जो कुछ करो वो सोच समझ के करो, बिना समझे कुछ नहीं, मत करो। नहीं करें उसको करने को नहीं बोलना, करते हैं उसको नहीं करने को नहीं बोलना है, इसलिए जो भी करना नहीं करना सोच समझ के करना, वो बात जरूर है। तो यहाँ जो बात चली है वो एक बहुत बड़ी गाइडेंस दिया है कि एक सत्पुरुष को खोज करके सभी अभिप्राय को, विपरीत अभिप्राय को छोड़ने की जिसकी तैयारी है उसको कहते हैं कि सर्वभाव समर्पण करके वो वर्तन करता है, प्रवृत्ति करता है, और उसको गारंटेड मोक्ष मिलता है। फिर भी नहीं मिले तो हमसे ले जाना का मतलब है कि वो लेने को आने वाला है ही नहीं, उसको मिल ही जाता है। ये बात उन्होंने जाति स्मरण ज्ञान के आधार पे बहुत भाव में, बहुत परिश्रम धार्मिक क्षेत्र में कर करके निष्फल जाने के बाद ये संशोधन करके रखी हुई बात है। बहुत से भावों के अनुभव के निचोड़ है ये, बहुत परिश्रम किया है पूर्व भूमि में, श्रीमद जी की आत्मा ने बहुत परिश्रम किया है धर्म के क्षेत्र में, कठिन से कठिन तपश्चर्या, और शास्त्र के विषय में बहुत से दिमाग लगाना, काफी काम किया है। फिर कोई सत्पुरुष मिले हैं, उन्होंने सारी योजना बता दी कि देखो ऐसे काम होता है, काम कोई कल से होता है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, बल से नहीं होता है। कैसे होता है? कल से होता है। हम एक दृष्टांत देते हैं कि लकड़ी में एक स्क्रू लगाया हुआ है, अब हाथ से पहलवानी करके खींचोगे, उंगली में खून निकल जाएगा, स्क्रू निकलने वाला नहीं है, कितना भी ताकत लगाओ। है इतना, कितना है? इतना ही है। इसके आटे में जो भी लकड़ी के परमाणु हैं, इसकी ताकत कितनी समझो तो कुछ नहीं, लेकिन ऐसे नहीं निकलता। डिसमिस ले लो स्क्रू ड्राइवर से, सेकंडों में निकल जाएगा। हर काम का तरीका होता है, पद्धति होती है। इतना बड़ा काम की पद्धति को समझे बिना, सोचे बिना आप कैसे काम करते हो? तो सत्पुरुष के पास योजना होती है, वो जानता है कौन कहाँ खड़ा है, इसको किस प्रकार का लगाव है, इसको किस प्रकार का मोह तीव्र है, उनको मालूम होता है। किसी को खाने पीने में इतना मोह नहीं होता है जितने कपड़े में होता है, कपड़े जूते में होता है। किसी को संगीत का होता है और किसी का कुछ होता ही नहीं। किसी को पैसे का होता है तो पैसा भोगने का भी तैयार ही नहीं है, उसको कमाने का ही बस लगता है, धुन लगती है, खर्च नहीं करेगा, बस कमाई जाओ। अनेक प्रकार का मोह होता है, मोह है वो, मोह है। वो जानते हैं किस तरह से उसको ठीक किया जाए, इसलिए वो जैसा कहे वैसा करना, उसको कहते हैं कि प्राप्त उपदेश को अवधारण करने की तैयारी। ये मानसिक तैयारी हो जानी चाहिए। फिर पीछे की पंक्ति में सत्पुरुष कैसे होते हैं इनका वर्णन किया है। सत्पुरुष वही है कि जो रात दिन आत्मा के उपयोग में है, उपयोग माने सावधानी, जिसको स्वरूप सावधानी है, हो रात पर वो निरंतर स्वरूप सावधानी में रहते हैं। स्वरूप का लक्ष्य छूटता नहीं जिसको, जैसे हम लाभ नुकसान के सावधानी में रात दिन है कि नहीं है, रात दिन हम हमारे लाभ नुकसान जहां भी माना है आर्थिक प्रयोजन में, हम उसमें सावधान है कि नहीं है, इसके उपयोग में है कि नहीं। कोई सीधा नहीं, दूसरी साइड से नुकसान पहुंचाने को आएगा तो भी हमको पता लग जाएगा, ये बात हम मंजूर नहीं करेंगे। कोथड़ा में पान शरीर नाखी ने मार मारे तो कहीं खाई ले कोई, एम धंधा में कोई निगोशिएशन करवावे, उल्टू सुलटू समझावे तो कई रीते समझी लिए से, कोई रीते समझी जाए से का बीजी रीते आपने फसावा मागे से, अपने भी शरत मंजूर न कराए, એવી શરતે આપણે કઈ કામ કરવું નથી। એવી રીતે જેમ સાવધાની રહે છે આપણા મતલબના વિષયમાં, જેમ સાવધાની રહે છે આત્માની શાંતિ અશાંતિ એ જ લાભ નુકસાન છે એ વિષયમાં ઘણી તૈયારી કરીને દશા કેળવીને પૂરી સાવધાની આવે છે જ્ઞાન દશામાં. અનંત સુખધામ જેને જોયું છે એ રાત દિવસે એના એનું ધ્યાન કેમ ચૂકે એમ કે છે. પંચેન્દ્રિયનું સુખ એ અનંત સુખ નથી, તો પણ જીવનું લક્ષ ત્યાં રહ્યા કરે છે કે નહીં? મન મહિલાનો વાલા ઉપર બીજા કામ કરંતરે એ આનંદ સુખ નથી ત્યાં, તો પણ એનું મન કેમ ત્યાં ને ત્યાં રહ્યું છે? કેમ કે સુખનો નિશ્ચય કર્યો છે કે આ મારા સુખનું કારણ છે. તો અનંત સુખધામ જોવે એની વાસ્તવિકતા શું? કે દિને રાત્ર રહે તદ ધ્યાન મહી. એવી રીતે જેનો ઉપયોગ છે, જિસકા કથન શાસ્ત્ર મેં નહીં મિલતા હો. આગમ કે મિલાને કી બાત ચલી, આગમ સે મિલાન નહીં ખાતા હો. જિસકા કથન શાસ્ત્ર મેં નહીં મિલતા, સુનને મેં ભી નહીં આતા, દેખો ફિર ભી અનુભવ મેં આ સકતા હૈ. પ્રેક્ટિકલ સાઈડ સે પરફેક્ટ હૈ, ભલે શાસ્ત્ર મેં નહીં હો, ભલે સુનાઈ નહીં હો, આગમ કી બાત લિયા કે નહીં લિયા, શાસ્ત્ર માને આગમ. અંતરંગ સ્પૃહા રહિત જિસકા ગુપ્ત આચરણ હૈ, સ્પૃહા નહીં હૈ, સ્પૃહા મેને લાલચ, જિસકો લાલચ નહીં હૈ કિસી બાત કી, કિસી ભી પ્રકાર કી લાલચ નહીં, વહી નિર્ભીક રૂપ સે બોલ સકતા હૈ. ગુપ્ત આચરણ મેને બડાઈ નહીં મારતા, હમકો લોભ નહીં હૈ, હમકો માન નહીં હૈ, હમકો વો નહીં હૈ, હમકો વો નહીં હૈ, વો બાત નહીં હૈ, લાલચ કુછ ભી નહીં હૈ, લેકિન બોલતા નહીં હૈ, બિહેવ એસા હી કરતા હૈ, ગુપ્તતા મેં વહી એસા હી બિહેવ કરતા હૈ. ઇસકો ગુપ્ત આચરણ કહેતે હૈ. બાકી તો કુછ કહા નહીં જા સકતા, ઓર એસા કિયે બિના તેરા કભી છુટકારા હોને વાલા નહીં હૈ. ઇસ અનુભવ પ્રવચન કો પ્રમાણિક માન, એ હમારી અનુભવપૂર્ણ બાત હૈ. પ્રમાણિક મેને માન્ય કરના, સ્વીકાર કરના, અનુભવ સે કહે રહે હૈ, કોઈ અનુમાન તર્ક લગા કે નહીં બાત કહે રહે હૈ, હમારા અનુભવ સિદ્ધ બાત કહે રહે હૈ. દેખિયે સિદ્ધાલય મેં અનંત આત્મા સિદ્ધ આત્માએ હૈ, એક ભી અનંત મેં એક ભી કેસ એસા નહીં હૈ ઓર હોને વાલા ભી નહીં હૈ. અભી આગે અનંત સિદ્ધ હોને વાલે કે જિસકો આત્મજ્ઞાની મિલે વિના આત્મજ્ઞાન હો ગયા હો, નોટ અ સિંગલ કેસ, એક ભી કેસ નહીં હો સકતા. ઉન્હોને યે કહા કે હમને બહોત પરિશ્રમ કિયા થા, ફિર ભી કોઈ જ્ઞાની પુરુષ મિલ ગયા और हमको चाहिए था, किसी कीमत पे हमको तो इस मार्ग में आना ही था, कोई भी कीमत लग जाए, तो हमको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई. इस परिस्थिति में अगर कोई आता है तो उसको भी ज्ञानी मिलता है और उसको भी प्राप्ति हो जाती है, तो उसका छुटकारा हो जाता है. लेकिन इसके बिना किसी का छुटकारा होता है ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ. ઇસ એક સત્પુરુષ કો પ્રસન્ન કરને મે ઉસકી સબ ઇચ્છાઓ કો પ્રસન્ન, ઇચ્છાઓ કી પ્રશંસા કરને મે उसे ही सत्य मानने में पूरी जिंदगी बीत गई, ज्यादा नहीं समझ, तो उनकी सेवा में पहचानने के बाद तो अधिक से अधिक 15 भाव में अवश्य मोक्ष में जाएगा, उसका मैक्सिमम 15 भाव है, बाकी इतना होता नहीं, 4-6-8 भाव में वो निकल जाता है, मैक्सिमम 15 भाव में इसका छुटकारा हो जाता है। तो क्या है कि जो पहचानता है वो उसको प्रसन्न होने में प्रसन्न रहता है, उसके नाराजगी में वो प्रसन्न कभी ऐसा नहीं करता है। मतलब क्या है, उसको तो वो तो निष्प्रभ होते हैं, सत्पुरुष प्रसन्न कम होते हैं, जीव की योग्यता होती है तब ये जीव खरी मुमुक्षुता में है, उसको मुक्त होने की खरी इच्छा हुई है, तब उसका चित्त प्रसन्न होता है, और कोई चित्त प्रसन्न होने का कोई कारण नहीं होता। बाकी तो वो जीव तो आज्ञाकारिता में आता है, तो उसकी सब इच्छा और प्रशंसा में वो आ जाता है, और फिर उसमें जीवन लगाने की उसकी तैयारी हो जाती है, तो उसका तो निवेड़ा हो ही जाता है। इस तरह से थोड़ा टाइम और हो गया है, लेकिन पत्र देना है ना किताब में, तो ये बात जो रहस्यपूर्ण बात है वो बात उन्होंने यहाँ रखी है कि बहुत बड़ा रहस्यपूर्ण बात है, और काफ़ी लोग भूले हुए हैं उसमें, नहीं भूलना चाहिए यहाँ तक।